स्वरूपिणी भी यही है। नवरात्रि के समय इनके 9 पावन स्वरूपों की समस्त संसार में पूजा अर्चना की जाती है। अब आप भगवती दुर्गा माता के चरण कमलों में साष्टांग नमन अर्पित कर दुर्गा सप्तशती की गाथा का श्रवण कीजिए। जय माता दी। भगवती संपूर्ण जगत में व्याप्त संपूर्ण जगतधारी नित्य रूपा और अजन्मा है, लेकिन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अनेकों रूपों में प्रकट हुई है। पुराणों के कथनानुसार एक युग के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, तब समस्त विश्व के स्वामी विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उसी समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर राक्षस मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। वो विष्णु जी के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। जब ब्रह्मा जी को उन असुरों के विचारों का आभास हुआ, तो वो एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली विश्व की अधीश्वरी, सृष्टि काल में जीवों की सृष्टिकर्ता और प्रलय काल में सबको अपना ग्रास बनाने वाली योग निद्रा स्वरूपिणी भगवती देवी का स्मरण करने लगे। जय माँ भगवती। पूर्ण होते ही तमोगुण की अधिष्ठात्री महादेवी योग निद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषनाग की शैया से जाग उठे। जागते ही उनकी नजर मधु कैटभ पर पड़ी। वो दोनों दुरात्मा अति बलवान और पराक्रमी दिखाई दे रहे थे। क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल दिखाई पड़ रही थी। वो ब्रह्मा जी को मारकर खा जाने वाली नजर से घूर रहे थे। तब भगवान श्री हरि उठकर दोनों के साथ बाहु युद्ध करने लगे, जो 5,000 वर्ष तक चलता रहा। महामाया भगवती देवी ने उन दोनों बलवान दैत्यों को अपने माया जाल से भ्रमित कर दिया। वो भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो भी चाहो वरदान मांग लो। मौके का फायदा उठाते हुए श्री हरि ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अभी मेरे हाथों द्वारा मारे जाओ। श्री हरि के वचन सुनकर मधु और कैटभ ने आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान ने अपने चक्र द्वारा उनका अंत कर डाला। इस प्रकार महामाया देवी ने ब्रह्मा जी के प्राणों की रक्षा की। जय महामाया।
See?
पराक्रम में महिषासुर और महादेवी जगदम्बा के महासंग्राम का वृतांत सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है, देवताओं और राक्षसों में महाघोर संग्राम हुआ जो वर्षों तक चलता रहा। उस युद्ध में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्रदेव थे। इसमें देवताओं की हार और असुरों की विजय हुई। सभी देवता स्वर्ग से खदेड़ दिए गए। वो सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव शंकर और विष्णु जी के पास गए। तब देवताओं ने उन्हें महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का पूरा वृतांत सुनाया और विनती की, हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की कहानी सुनकर भगवान विष्णु तथा महारौद्र शिव शंकर की भौहें बन गई, चेहरा तमतमा गया, आंखों में क्रोध की ज्वालाएं भड़कने लगी। उसी समय श्री विष्णु जी के मुख से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शिव शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम आदि समस्त देवताओं के शरीर से भी अलौकिक तेज प्रकट हुआ। ये समस्त देवताओं का तेज एक साथ मिलकर भयंकर आग की लपटों का एक पहाड़ दिखाई देने लगा। इसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। थोड़ी ही देर में वो तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। उस देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए गए देवता बहुत प्रसन्न हुए और सभी देव अपनी अपनी शक्ति उस देवी को समर्पित करने लगे। जय आता देवी। भेंट त्रिशूल उसे शिव ने भगवान विष्णु ने चक्र दिया। किया वरुण देव ने शंख, भेंट देवेंद्र ने अपना वज्र दिया। दिया वायु देव ने धनुष बाण, महाकाल ने दी तलवार उसे। दिया दुर्लभ शेर हिमालय ने, दिया अग्नि देव ने दाह उसे। सागर ने कमल और वस्त्र दिए, किए भेंट कमंडल ब्रह्मा जी। जय बोलो दुर्गा माता की, जय जय महादुर्गा माता की। जय बोलो अम्बे माता की, जय बोलो अम्बे माता की। जय जय जगदम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी,
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां।
हाथी ये रावत ने घंटा दिया, यम ने काल दंड अपना। दिए कुंडल कवच विश्वकर्मा, दिए अक्षय पात्र कुबेर पना। मणियों से सुशोभित नाग हार, किया भेंट शेष जी ने उसको। दिव्य हार कंगन चूड़ा, मणि दिए शीर सागर उसको। दी शक्ति उसे सब देवों ने, सूर्य ने दहकती आभा दी। जय बोलो जगदम्बा विभिन्न परिधानों और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर सवार हुई तो सभी देवता एक साथ बोल उठे, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो। सिंह पर सवार होते ही महादेवी रणचंडी ने ऐसी भयंकर अट्टहासपूर्ण गर्जना की कि जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र में तूफान आ गया, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे। संपूर्ण त्रिलोकी को भयग्रस्त देखकर महिषासुर अपनी सेना के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया जहां पर रणचंडी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढककर खड़ी हुई। देखते ही देखते दोनों ओर से युद्ध शुरू हुआ। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहारों से चारों ओर अंधेरा छा गया। उस युद्ध में चिक्षुर नामक महादैत्य महिषासुर का सेनापति था। दैत्यों की चतुरंगिनी सेना के साथ चामर, 60,000 रथियों के साथ उदग्र, 1,00,000 रथियों के साथ महाहनु जिसके शरीर के रोएं तलवार के समान थे, 5,00,000 रथी और सैनिकों के साथ असीलोमा महादैत्य, 60,00,000 रथियों के साथ वाष्कल दैत्य, 1,00,000,000 रथियों के साथ परिवारिक, 5,00,000,000 महारथियों के साथ बिडाल नामक महादैत्य और 1,00,000,000,000 सेना के साथ महिषासुर भी शामिल था। सभी दैत्य अस्त्रों शस्त्रों से महादेवी को मार डालना चाह रहे थे। भगवती परमेश्वरी कुछ ही देर तक उनके साथ अस्त्रों शस्त्रों का खेल खेलती रही, फिर अचानक उन्होंने असुरों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। तब महादेवी का श्रेष्ठ वाहन शेर किसी जंगल में लगी आग की तरह दानव सेना में विचरण करने लगा। जय रणचंडी। देवताओं पर झपटने वाले दानव महादेवी भगवती के गणों के आगे मच्छर के समान नजर आने लगे। थोड़ी ही देर में महादेवी जगदम्बा ने दानवों की विशाल सेना का सफाया कर दिया। आकाश में खड़े देवता जगदम्बे माता की जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। अपने महाबली सेना नायकों और विशाल सेना का महाविनाश होते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सींगों से देवी के गणों को त्रास देने लगा। उसकी सांसों के वेग से बड़े बड़े पर्वत उखड़कर महादेवी के गणों के ऊपर गिरने लगे। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र में तूफान आ गया जो पृथ्वी को डुबोने लगा। उसके खुरों के आघात से धरती फटने लगी। जब भगवती चंडिका देवी ने महिषासुर का प्रचंड रूप देखा तो उसे पास में बांध लिया, लेकिन महिषासुर ने तुरंत ही उस भैंसे के स्वरूप को त्याग कर एक शेर का रूप धारण कर लिया। जब अंबिका देवी तलवार से उसका मस्तक काटने झपटी तो वह फिर मनुष्य का रूप धारण करके ढाल तलवार से युक्त होकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगा। तब महादेवी ने बाणों के द्वारा उसे घायल कर दिया। महाबली महिषासुर ने फिर हाथी का स्वरूप धारण कर लिया और भयंकर गर्जना के साथ महादेवी के वाहन सिंह को अपनी सूंड में लपेटने लगा। तभी महादेवी ने तलवार से उसकी सूंड ही काट डाली। उस महादैत्य ने तुरंत ही फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही भांति उत्पात करने लगा। तब अत्यंत क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका देवी मधु का पान करने लगी। उस समय बल और पराक्रम के नशे में मदमस्त राक्षस अपने सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर महादेवी के ऊपर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। महादेवी जगदम्बा ने उसके द्वारा फेंके गए पहाड़ों को बाणों से काटते हुए कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तू खूब गर्ज ले, थोड़ी देर बाद तू मारा जाएगा, तब सभी देवता गर्जना करेंगे। बारंबार मधु का पान करने से जब चंडिका देवी की आंखें लाल हो गईं, तो वो उछलकर उस महादैत्य के ऊपर सवार हो गई। फिर उसे एक पैर से दबाकर त्रिशूल द्वारा उसकी गर्दन पर आघात किया। घायल होने पर महिषासुर उस भैंसे के मुंह से बाहर निकलने लगा। मनुष्य के रूप में अभी वो आधा ही निकल पाया था कि महादेवी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकला हुआ ही वो महादेवी चंडिका देवी से युद्ध करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई महादेवी चंडिका ने तलवार से उसका मस्तक काट डाला। महिषासुर का अंत होते ही सभी देवता धरती पर उतर आए और महादेवी की जय जयकार करने लगे। आकाश से धरती पर फूलों की बरसात होने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। फिर दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर देवताओं ने महादेवी दुर्गा माता का स्तवन किया। जय माँ दुर्गा। शक्ति जगदम्बा ने देवों की हमेशा रक्षा की। जय बोलो दुर्गा माता की, जय जय महादुर्गा माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी,
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
भगवती विष्णु माया देवी शत शत वंदन लख नमस्कार, महादेवी शिवा गौरी नित्या शत शत वंदन लख नमस्कार। देव माता भाविनी तपस्विनी शत शत वंदन लख नमस्कार, ज्योत्स्नामयी चंद्र रूप माता शत शत वंदन लख नमस्कार।
ना जाने कितनी बार प्रलय हुई है, पुनः पुनः फिर सृष्टि की रचना हुई है। एक सृष्टि काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो भाई महाप्रतापी दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्र देवता से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया तथा सूर्य, चंद्रमा, वरुण, यमराज और कुबेर के समस्त अधिकार छीन लिए। वायु और अग्नि को भी अपने अधीन कर लिया। सभी देवताओं को पराजित और अपमानित करके स्वर्ग से खदेड़ दिया। अधिकारहीन और तिरस्कृत सभी देवता हिमालय पर एकत्र हुए। तब उन्हें जगदम्बा देवी का वो वरदान याद आया जो महिषासुर वध के बाद स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं को दिया था। तब देवी ने कहा था, कभी भी आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का तत्काल विनाश कर दूंगी। इसीलिए सभी देवता भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जब ये देवता हिमालय पर स्तुति में मग्न थे, तभी माता पार्वती गंगा जल में स्नान करने के लिए वहां पर आईं। वो देवताओं से बोली, आप सभी देवता यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब माता पार्वती के ही शरीर से एक अति अनुपम परम सुंदरी देवी प्रकट हुई और बोली, शुंभ और निशुंभ दैत्य से पराजित ये सभी देवता मेरी स्तुति में लीन हैं। जगदम्बा कौशिकी देवी को जब देवताओं ने देखा तो उनकी वंदना करने लगे। जय माँ कौशिकी। वहाँ पर चंड और मुंड नामक दो दैत्य आ पहुँचे। उन्होंने माता कौशिकी देवी को परम सुंदरी स्त्री के रूप में हिमालय पर विचरण करते हुए देखा। फिर वो तत्काल ही दैत्यराज शुंभ के पास पहुँचे और बोले, तीनों लोकों के स्वामी शुंभ की जय हो। महाराज, हम अभी अभी एक अनुपम सुंदरी को देखकर आए हैं जो अपनी कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। सारे संसार में इतनी सुंदर और कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। हे असुरेश्वर, तीनों लोकों के उत्तम रत्न और मणि हाथी इंद्र के ऐरावत के साथ और घोड़े उच्चे श्रवा के साथ तथा पारिजात का वृक्ष आपके यहाँ शोभायमान है। ब्रह्मा का हंसो युक्त विमान भी आपके पास है। महापद्मनी भी आप कुबेर से छीन चुके हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला छत्र भी आप ही के पास है। हे महादैत्यराज, जब सारे ही उत्तम रत्न आपके अधिकार में हैं, तो इस परम सुंदर स्त्री रूपी रत्न को क्यों छोड़े रखा है? इसे भी अपने अधिकार में ले लीजिए। चंड और मुंड की बातें सुनकर असुरेश्वर शुंभ ने सुग्रीव दैत्य को अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा। हिमालय पर जाकर सुग्रीव देवी से मिला और बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ और निशुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। उनकी आज्ञा को टालने का साहस देवताओं में भी नहीं है। संपूर्ण त्रिलोकी उनके अधिकार में है। मैं उनका दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उनका वरण करने से तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। उनकी अनुकंपा से तुम तीनों लोकों की पूजनीय बन जाओगी। दूत की बातें सुनकर कल्पमयी भगवती दुर्गा देवी मन की मन मुस्कुराई और बोली, हे दूत, तुम्हारे वचन सत्य हैं, अच्छे हैं, मगर मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ विवाह करूंगी। देवी की बातें सुनकर दूत बोला,
करते हैं देव सभी उनके आदेश का उल्लंघन।
नहीं कर सकते कभी। चल दो तुम मेरे साथ अभी, गौरव की बात यही होगी। जय बोलो दुर्गा माता की, जय जय महादुर्गा माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी,
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता
दी। देवी ने कहा
जैसे तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर मेरे पास आए हो, वैसे ही मेरा संदेश भी उनके पास तक पहुंचा दो। फिर जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। संदेश वाहक सुग्रीव दैत्य वापस शुंभ के पास आया और अक्षय सह सारा वृतांत सुना दिया। देवी द्वारा कहे गए वचन सुनकर शुंभ बड़ा क्रोधित हुआ और दैत्यों के सेना नायक धूम्र लोचन को आज्ञा दी, तुम अभी अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। अगर उसकी रक्षा के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे मार डालना। तब धूम्र लोचन दैत्य 60,000 सैनिकों के साथ हिमालय पर्वत पर भगवती देवी के सामने पहुंचा और ललकार कर बोला, हे सर्वांग सुंदरी, तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास चल, नहीं तो तुझे मैं बल पूर्वक घसीटते हुए उनके पास ले जाऊंगा। तब महादेवी भगवती ने कहा, तुम्हें दैत्यों के महाप्रतापी राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बहुत बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, मैं तुम्हारा बिगाड़ ही क्या सकती हूँ, लेकिन मैं युद्ध में परास्त होने के बाद ही कहीं जा सकती हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। देवी की बातें सुनकर क्रोध में भरा हुआ धूम्र लोचन महादेवी की ओर तलवार लेकर दौड़ा। तब अंबिका देवी ने धूम शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। फिर थोड़ी ही देर में उसकी विशाल सेना भी तहस नहस कर डाली। धूम्र लोचन के मारे जाने का समाचार सुनते ही दैत्यराज शुंग ने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को एक विशाल सेना के साथ भेजा और आज्ञा दी कि उस दुष्टा को बांध कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। चंड और मुंड चतुरंगिणी सेना के साथ हिमालय पर्वत पहुंचे, जहां महामाया अंबिके सिंह पर बैठी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखते ही दैत्यों ने अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू कर दिए। जय माँ अंबिका।
प्रकटी हुई टेढ़ी
छोले थे भयंकर आंखों में, की बाघ चर्म साड़ी उनकी, गल नर मुंडों की माला थी। जय बोलो दुर्गा माता की, जय जय महा दुर्गा माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी,
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता
दी। देखो कि विशाल सेना पर मां काली देवी टूट पड़ी, अस्त्रों शस्त्रों के साथ सभी देवताओं का भक्षण कर, चलती जाती थी। असुरों के चलाए अस्त्र शस्त्र दांतों से पीसती जाती थी। जय बोलो दुर्गा माता की, जय जय महा दुर्गा माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की।
थोड़ी ही देर में कालिका देवी ने असुरों की सेना का विनाश कर डाला। अपनी सेना के विनाश से क्रोधित चंड ने देवी पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा की तथा हजारों हजार चक्र चलाकर भयानक रूप धारिणी देवी को आच्छादित कर दिया। लेकिन वो बाण और चक्र कालिका देवी के मुंह में समाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे करोड़ों सूरज बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। फिर भयंकर अट्टहास के साथ महादेवी कालिका एक बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करते हुए चंड पर झपटी और उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंडवी देवी को मारने के लिए आ पहुंचा। तब अत्यंत रोष में भरी हुई देवी कालिका ने उसे भी उसी तलवार से मौत के घाट उतार कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देखकर भय से व्याकुल बचे हुए असुरों की सेना भाग खड़ी हुई।
जय माँ काली।
जब सुना शुंभ ने
महाबलधारी, जय बोलो दुर्गा माता की, जय जय महा दुर्गा माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय बोलो अम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की, जय जय जगदम्बे माता की।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी,
जय माता दी, जय माता।
देखा जगदम्बा ने टंकार धनुष की थी ऐसी पाताल गगन सब गूंज उठे। फिर महाकालिका देवी ने विकराल बढ़ा दी मुखाकृति। जय बोलो
विशाल थी। जगदम्बा देवी के चारों ओर दैत्य ही दैत्य नजर आते थे, जैसे किसी भयंकर तूफानी नदी का पानी सागर में समा जाता है। वैसे ही दैत्यों की सेनाओं के दल विजया देवी के मुंह में समाते जा रहे थे। आकाश में खड़े देवता इस दृश्य को देखकर अपने मन में अति प्रसन्न हो रहे थे। जब दैत्यों की सेना नायकों ने अपनी सेना को यूं काल का ग्रास बनते देखा तो उन्होंने सभी दैत्यों को दूर रहकर देवी पर अस्त्र शस्त्र चलाने का आदेश दिया। तब कालिका देवी के शरीर से निकलकर कई अन्य देवियां बाहर आईं। उधर आकाश में खड़े हुए देवताओं की शक्तियां भी देवी का स्वरूप धारण करके दैत्यों से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में आईं। सबसे पहले अक्ष सूत्र और कमंडलों से सुशोभित हंस युक्त विमान पर बैठी हुई ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी उपस्थित हुई। फिर महादेव जी की शक्ति हाथ में त्रिशूल धारण किए महानाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित वृषभ पर आरूढ़ होकर आईं। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका हाथ में शक्ति लिए मयूर पर बैठकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार शंख चक्र गदा धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति वाराही रूप उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नरसिंह रूप धारण करके आई। इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत पर सवार होकर आई। उसके सहस्र नेत्र थे। तब देवादि देव महादेव शिव शंकर ने आकाश से घोषणा की, हे दैत्यो, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो युद्ध के मैदान को छोड़कर पाताल में जाकर छुप जाओ। यदि बल के घमंड में युद्ध करोगे तो मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगे। भगवान शिव के वचन सुनकर वे सभी महादैत्य क्रोध में आकर सभी देवियों पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करने लगे और देवियां भी खेल की खेल में दैत्यों द्वारा चलाए गए शस्त्रों को काटने लगे। अचानक कालिका देवी के शरीर से एक महाचंडिका देवी का प्रादुर्भाव हुआ। जय महाचंडिका। थोड़ी ही देर में दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। उनके अधिकांश सेनापति भी मारे जा चुके थे। दैत्यों की सेना युद्ध भूमि से घबराकर भागने लगी। अपनी सेना को भागते हुए देखकर रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर इंद्र शक्ति के सामने आया। ऐंद्री देवी ने वज्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तब रक्तबीज के शरीर से निकला खून धरती पर बहने लगा, जिससे हजारों हजार रक्तबीज पैदा हो गए और सभी देवियों से युद्ध करने लगे। रक्तबीज को ये वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही नए रक्तबीज और पैदा हो जाएंगे। सभी देवी शक्तियाँ उन रक्तबीजों का संहार कर रही थीं, मगर वो जितने रक्तबीजों को मारती थी उससे कई हजार गुना नए रक्तबीज और पैदा हो जाते थे। थोड़ी ही देर में सभी देवियों के चारों ओर रक्तबीज ही रक्तबीज नजर आने लगे। इस विकट परिस्थिति को देखकर आकाश में खड़े देवता भी भयभीत होने लगे। देवताओं को उदास देखकर महाकाल चंडिका ने कालिका देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और ज्यादा फैलाओ, मैं इन रक्त बीजों का संहार करूंगी। तुम इनके शरीर से निकलने वाले रक्त को भक्षण करती रहना। इस प्रकार चंडिका देवी ने रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए करोड़ों करोड़ रक्त बीजों का संहार करना प्रारंभ कर दिया और कालिका देवी मारे गए रक्त बीजों के रक्त का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कुछ देर भयंकर युद्ध के बाद मैदान में देवी के सामने अकेला रक्तबीज युद्ध करता हुआ नजर आने लगा। तब चंडिका देवी ने शूल से उसका भी प्राणांत कर दिया। उसके शरीर के सारे रक्त को कालिका देवी चेक कर गई। आहत और रक्तहीन उस महादैत्य का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई।
जय माँ चंडिका।
रक्त बीज के मारे जाने पर आया निशुंभ दौड़ा दौड़ा, महाकाल बनी रण चंडी से उसने माँ गोरे हाथ छेड़ा। महाशस्त्र समूहों की वर्षा दोनों ही ओर से होने लगी। एक ओर शक्तियाँ देवी की, एक ओर दैत्य थे महाबली।
सिंह के सुन दहाड़ असुरी सेना थर्राती होकर आकाश मार्ग से रणभूमि में आया। उसकी आठ भुजाएं अनुपम आयुधों से सुशोभित थी। उसे देख महाचंडिका देवी ने शंखनाद किया। घंटे की घोर आवाज के साथ धनुष की प्रत्यंचा से भयानक आवाज की। कालिका देवी ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से ऐसा आघात किया जिससे चारों दिशाएं गूंजने लगी। समुद्र में तूफान आ गया। पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। शिव दूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन सभी शब्दों को सुनकर भयंकर असुरों की सेना थर्रा उठी। तब क्रोधित होकर शुंभ ने ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान उस शक्ति को महादेवी ने एक लूप से दूर हटा दिया। तब शुंभ ने ऐसा सिंहनाद किया जिससे तीनों लोग थर्रा उठे। फिर शुंभ ने देवी पर अनेकों अस्त्र शस्त्र और शक्तियों से प्रहार किया, लेकिन महादेवी ने अपने हथियारों से सभी को काट डाला। फिर क्रोधित होकर महादेवी चंडिका ने शूल का ऐसा प्रहार किया जिसे शुंभ नहीं रोक सका और घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शुंभ के बेहोश होते ही उसके भाई निशुंभ को होश आ गया। वो उठ खड़ा हुआ और उसने भयंकर बाणों से महादेवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह को घायल कर डाला। फिर अपनी 10,000 बाहें बनाकर हजारों हजार चक्रों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली
भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उन चक्रों को काट कर गिरा दिया। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। चंडिका देवी ने अपनी गदा को तलवार से काट गिराया। फिर निशुंभ शूल हाथ में लेकर देवी पर झपटा। तब महादेवी चंडिका ने देवताओं को पीड़ा देने वाले उस महादैत्य की छाती को अपने शूल द्वारा छेद डाला। शूल से घायल होने पर उसकी छाती से दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस पुरुष की बात सुनकर महादेवी बहुत जोर से ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। इस प्रकार निशुंभ मारा गया। उसकी गर्दन को सिंह ने अपने दाढ़ों से कुचल कर खा लिया। फिर तो सभी देवी शक्तियां असुरों का संहार करने लगी। कालिका देवी तथा शिव दूती महाबली दैत्यों का भक्षण करने लगे। प्यारे भाई को अत्यंत भयानक दैत्यों के साथ मरा हुआ देखकर बोला, हे दुर्गे, तू दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ रही है। अगर तुझ में शक्ति है तो अकेली ही मेरे साथ युद्ध कर। तब सिंह वाहिनी दुर्गे ने कहा, ओ दुष्ट, इस संसार में मेरे सिवा कोई और शक्ति नहीं है। ये सब तो मेरी विभूतियां हैं। तू देख अपनी आंखें खोलकर। तब देखते ही देखते समस्त देवियां अंबिका देवी के स्वरूप में लीन हो गई। फिर देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित थी। अब मैंने सभी रूपों को समेट लिया है। मैं अकेली खड़ी हूँ, तू मुझसे युद्ध कर। इस प्रकार महाबली शुंभ तथा अंबिका देवी के बीच महासंग्राम शुरू हुआ। भयंकर बाणों, तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों का प्रहार दोनों ओर से होने लगा। उस समय अंबिका देवी ने हजारों दिव्य अस्त्र चलाए, जिन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें परमेश्वरी अंबिका देवी ने हंकार मात्र से ही भस्म कर डाला। तब क्रोध से भरे हुए असुर ने एक साथ हजारों बाण छोड़े। यह देख महादेवी ने ऐसा बाण चलाया जिसने असुर द्वारा छोड़े गए बाणों को काटते हुए उसके धनुष को भी काट डाला। तब दैत्य ने शक्ति हाथ में ली। महादेवी ने चक्र से उसे भी काट दिया। फिर दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और दिव्य तलवार हाथ में लेकर देवी पर धावा बोल दिया। महादेवी ने तीखे बाणों से उसकी ढाल और तलवार को काट कर गिरा दिया। इसी प्रकार धीरे धीरे जगदम्बा माता ने उस असुर के सभी अस्त्र शस्त्र काट डाले। उसके दिव्य रथ को भी सारथी और घोड़ों के साथ तहस नहस कर दिया। शस्त्र विहीन होने पर उस दैत्य ने महादेवी की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। तब गुस्से में तमतमाई हुई देवी ने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मगर वो तुरंत ही फिर खड़ा हुआ और महादेवी को पकड़कर आकाश में ले गया। तब चंडिका और शुंभ के बीच आकाश में ही युद्ध होने लगा। सभी सिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता लोग इस युद्ध को आश्चर्य से देख रहे थे। बहुत देर तक ये युद्ध चलता रहा। आखिर अंबिका देवी ने पर विजय प्राप्त की। उस महाबलशाली तेजस्वी दैत्यराज को बल और तेज विहीन करके चंडिका देवी ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसके जमीन पर गिरने के आघात से सागर, पहाड़, द्वीप सभी कांपने लगे। फिर अति रोष में भरी हुई अंबिका देवी ने उस महादैत्य की छाती को त्रिशूल से छेद डाला। इस प्रकार महादेवी जगदम्बे ने देवताओं को शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से मुक्त किया। आकाश में खड़े देवता भी जमीन पर आ गए और कहने लगे, हे जगदम्बे तुम्हारी जय हो, हे अम्बे माता तुम्हारी जय हो। महादैत्य पति शुंभ और निशुंभ से मुक्ति दिलाने वाली महादेवी कात्यायनी की सभी देवता अग्नि को साक्षी करके स्तुति करने लगे। उस समय महादेवी के मुखमंडल के अलौकिक प्रकाश से सभी दिशाएं जगमगा रही थी। जय हो महादेवी कात्यायनी माता।
Para nada.
असुर घाती जय हो शुंभ निशुंभ वितारिणी देवो की सदा ही रक्षा की मां तुम विनाश करती रहना बड़ जब जब दैत्य धर्म द्रोही जय बोलो
देवी ने कहा हे देवताओं तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो बोलो मैं उसे भी पूरा करूंगा। देवता बोले हे भगवती आपने हमारे शत्रुओं का विनाश करके हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी जैसे आपने हमें हर संकट से उबारा है वैसे ही आप मनुष्यों को भी सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करने की कृपा करें। तब महेश्वरी जगदम्बा देवी ने कहा था हे देवताओं जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर प्रतिदिन मेरा भजन श्रवण करेगा मैं उसकी सारी बाधाएं निश्चित ही दूर कर दूंगी और जो मनुष्य अष्टमी चतुर्दशी और नौमी के दिन भक्ति भाव से मेरे महात्मय मधु कैटभ नाश महिषासुरवध तथा शुंभ निशुंभ संहार के प्रसंग का पाठ या श्रवण करेंगे मैं उन्हें पाप रहित कर दूंगी कभी आपत्तियां नहीं आने देंगे उनके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होने देंगे तथा उन्हें कभी अपने प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट नहीं भोगने देंगे। इतना ही नहीं शत्रु और लुटेरों से सदैव उनकी रक्षा करूंगी अग्नि जल के भय से मुक्त रखूंगी मेरा यह महात्मा परम कल्याणकारी है जिसे सभी मनुष्यों को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करना चाहिए। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता हो और मेरी आरती उतारी जाती हो मैं उस स्थान को कभी नहीं छोड़ती वहाँ आने वालों पर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। जो मनुष्य मेरे प्रादुर्भाव और युद्धों में किए गए पराक्रम के महात्म्य को बलिदान पूजा होम और महोत्सवों के अवसर पर श्रवण करेगा उसे मैं धन धान्य और संतान से संपन्न करूंगी ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं से मुक्त करूंगी दो स्वप्नों को शुभ स्वप्नों में परिवर्तित करूंगी भूतों और पिशाचों के भय को दूर करूंगी जो लोग पुष्प धूप दीप गंध नाना प्रकार की सामग्रियों से प्रतिदिन मेरा पूजन करते हैं अभिषेक करते हैं उत्तम नैवेद्य अर्पण करते हैं हवन करते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं दान देते हैं उन्हें जो फल एक वर्ष में प्राप्त होता है मेरे संपूर्ण महात्म्य को एक बार श्रवण करने पर उतना ही शुभ फल प्राप्त होगा। देवताओं से ये बातें कहने के बाद आदि शक्ति अजन्मा प्रचंड पराक्रम वाली भगवती जगदम्बा देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई।
बोलो श्री दुर्गा माता की।